परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों पुराने नियम के पुस्तकों में से अंतिम पुस्तक मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए ताकि वे आपके वचन पर विश्वास करके आपकी ओर फिर सकें, आपसे प्रेम कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब मलाकी नबी की पुस्तक उसके एक अध्याय को देख रहे हैं। परमेश्वर ने इसराइल को भेंट लाने और बलि चढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के आधार पर परमेश्वर उनसे शिकायत करता है कि उन्होंने उसकी वेदी को अशुद्ध कर दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने तो अच्छे से अच्छा दान दिया और बलि चढ़ाई है, परमेश्वर क्यों व्यर्थ की बात कहता है? अतः परमेश्वर उनसे एक प्रश्न पूछता है, यदि तुम ऐसी भेंट लेकर अपने हाकिम के पास जाओगे तो स्वयं ही बताओ कि क्या वह प्रसन्न होगा और तुम पर अनुग्रह करेगा। इस प्रश्न के द्वारा से उनको बहुत कठिनाई होती है। आज हम देखेंगे कि उसके जवाब में परमेश्वर क्या कहता है। आइए आप मेरे साथ मलाकी की पुस्तक एक अध्याय उसके 8 पद को निकाल लीजिए। एक अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है कि जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? क्या तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? यहां स्पष्ट है कि वह पशु की चर्चा कर रहा है। परमेश्वर ने आरंभ ही में उन्हें निर्देश दे दिया था कि वे जब बलि के लिए पशु या पक्षी लाए तो वह निर्दोष एवं निष्कलंक हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि आप उतरे हुए वस्त्र किसी के लिए दे रहे हैं तो वह परमेश्वर की दृष्टि में सराहनीय नहीं है। निसंदेह वे काम में आ सकते हैं, परंतु वे आत्मत्याग का दान नहीं है। लय व्यवस्था की पुस्तक 22 अध्याय उसके 20 से 23 पद में परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था, जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा का या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के कहने का अभिप्राय यह था कि उनकी बलि चढ़ाना परमेश्वर के निष्कलंक निर्दोष मेमने प्रभु यीशु मसीह, जो जगत के पाप उठा ले जाने वाले मसीह का चित्रण था। उनकी अशुद्ध बलि प्रभु यीशु का अपमान था। यदि वे लय व्यवस्था के निर्देशों से चूके तो परमेश्वर उन्हें पुनः स्मरण करता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय के 21 पद में लिखा है, परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। मलाकी के युग में वास्तव में जो हो रहा था वह यह था, मान लीजिए किसी के पास बहुत ही अच्छा बैल है जो हर एक प्रतियोगिता में जीतता है। एक दिन वह बीमार हो जाता है और उसका मालिक जानवरों के डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि वह मर जाएगा। अब उस बैल का मालिक सोचता है, यह इतना अच्छा बैल है, इससे पहले कि यह मर जाए मैं इसे परमेश्वर को बलि चढ़ा दूंगा, और वह तुरंत उसे ले जाकर मंदिर में जाता है। याजक भांप लेता है कि वह बैल या जानवर रोगी है, परंतु वह एक बड़ा व्यक्ति है, इसलिए याजक कुछ भी नहीं कह पाता है। अब जब लोग देखते हैं कि ऐसा अच्छा पशु या अच्छा बैल बलि में चढ़ाया गया है, तो वे उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, हम मलाकी के युग के आराधकों से अपनी तुलना कैसे करेंगे? दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में पौलुस लिखता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मनुष्य बड़ा ही धर्मी दिखाई देगा। आज अधिकांश विश्वासियों में महान भक्ति का भेष दिखाई देता है। पौलुस कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु शक्ति को ना मानेंगे। डालडा घी जैसा तो दिखता है, परंतु वह घी नहीं है। एक बार एक कंजूस ने अपनी पत्नी को समूर का कोट ला करके दिया। जब वह उस कोट को पहनती थी, तब लोग सोचते थे कि वह कंजूस कैसे अपनी पत्नी को इतना महंगा कोट दे सकता है। एक दिन वे टहलने के लिए निकले, रास्ते में एक कुत्ता था। उस कुत्ते को देख वह कोट उसके शरीर पर से उतार कर भागने लगा, क्योंकि वह खरगोश की खाल का सस्ता कोट था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह झिड़की हमारे लिए लाल बत्ती है। यह संदेश उनके लिए है जो नियमित रूप से आराधना में जाते हैं। वे रूढ़िवादी हैं और धार्मिक शब्दावली का उपयोग करते हैं। वे स्वाद रहित नैतिकता से संतुष्ट हैं। उनकी ऐसी आराधना वास्तव में परमेश्वर का अपमान है। डॉक्टर जी कैम्बल मॉर्गन का कहना था, मैं सड़क की अशुद्ध की अपेक्षा आराधना की अशुद्धता के बारे में अधिक भयभीत रहता हूं। अब आप कहेंगे, मैं तो बीमार पशु नहीं चढ़ाता हूं। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? क्या आप कर चुकाने के लिए कर बीमार जानवर दे सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को देने से अधिक कर चुकाते हैं? मैं कहता हूं आप पर लानत है यदि आप परमेश्वर को देने से अधिक कर चुकाते हैं। मेरे विचार में आराधनालय की गंदगी कच्ची बस्ती में रहने वाले शराबियों से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि आज आराधनालय में दिखावा बहुत अधिक है। मेरे मित्रों, मैं एक जनमान्य धनवान मनुष्य को जानता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, परंतु उसकी दानशीलता पर मुझे संदेह था। वह आपको बहुत दान दे सकता था, परंतु शर्त यह थी कि आपको उसका नाम लिखना होगा। जब हम अपना मुख्यालय प्रभु की सेवकाई के लिए बना रहे थे, तब कुछ लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग देना चाहा, परंतु उनकी शर्त थी कि हम अपने इस इमारत को उनका नाम दें। परंतु हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपका दान परमेश्वर के वचन के प्रसारण में काम में आता है, दीवारों पर आपका नाम लिखने के लिए नहीं। हमारे इस नीति के कारण अनेक धनवान हमसे अलग हो जाते हैं। ये लोग तुरही और ढोल बजाकर दान देते हैं। प्रभु यीशु ने एक फरीसी का उदाहरण दिया जो सड़क पर तुरही बजवाकर दान दे रहा था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यही धनवान मनुष्य जिसका नाम लिखने से हमने इनकार कर दिया था। एक बार मुझे एक होटल में भोजन के लिए ले जाया गया। वहां उसने परिचारिका को 100 रुपए टिप दी। उसके बाद हम आराधना के लिए चले गए तो वहां उसे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। क्योंकि वह बड़ा आदमी था, वहां मैंने देखा कि उसने भेंट में 50 रुपए ही दिए, जबकि उसने होटल की परिचारिका को 100 रुपए दिए थे। मैंने सोचा उसने परमेश्वर को उदारता से टिप नहीं दिया। मेरे मित्रों, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मंदिर में बैठा देख रहा था कि मनुष्य कैसे दान देता है। कुछ लोगों के मन में यह विचार आया होगा, मेरे दान देने से इसे क्या लेना देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि रविवार की आराधना में वह देखता है कि आप कितना दान देते हैं। क्या अपने दोस्त के साथ होटल में भोजन करने के बाद आप टिप ज्यादा देते हैं और परमेश्वर के भवन में दान आप कम देते हैं या अधिक? क्या आप प्रभु की सेवा में उतना ही दान देते हैं जितना आप प्रशंसा पाने के लिए अन्य स्थानों में देते हैं? बीमार पशु आज भी बलि चढ़ाए जा रहे हैं, परंतु विश्वास रखें, परमेश्वर को यह स्वीकार नहीं है। अब उसके चुभते व्यंग को सुने। कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को कर चुकाने के बराबर या उससे अधिक दान दे रहे हैं? आपका तर्क होगा, कर तो चुकाना मेरी व्यवस्था है। ठीक है, परंतु आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आपका दान आपके प्रेम के आधार पर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें दशमांश देना तो अनिवार्य नहीं है, परंतु मूसा की व्यवस्था में एक से अधिक दशमांश देने होते हैं। दो दशमांश तो हम जानते हैं, परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि उन्हें 3 दशमांश देने होते थे। इसका अर्थ है कि उन्हें 30% दान देना होता था। आज आप कितना प्रतिशत दान देते हैं? मंदिर में प्रभु यीशु लोगों को दान देते हुए देख रहा था। उसने धनवानों के दान की प्रशंसा नहीं की क्योंकि उन्होंने अपने लिए कहीं अधिक बचा कर रखा था। उसने उस विधवा की प्रशंसा की जिसके नगण्य सिक्के मंदिर के भंडार में स्थान नहीं रखते थे, परंतु प्रभु यीशु ने उसे स्वर्ग में सोने के बराबर माना और कहा कि उसने सबसे अधिक दान दिया। मुझे अपनी बाइबल अध्ययन सेवा के संचालन पर बड़ा आश्चर्य होता है। अनेक विधवाएं हमें 50-50 रुपया भेजती हैं और कहती हैं कि हमारे खर्चों की तुलना में उनका दान नगण्य है, परंतु उन सब के दान कुल मिलाकर बहुत हो जाते हैं। हमारी सेवा को संभालने वाले वे हैं जो छोटा छोटा दान भेजते हैं। मेरे प्रियो, मलाकी के युग में इसराइली बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को बलि के लिए ले आते थे। परमेश्वर कहता है कि उसे ऐसे बलिदान की आवश्यकता नहीं। आज कहा जाता है कि हमारी भेंट पुराने नियम में याजक द्वारा चढ़ाई गई बलि के तुल्य है, परंतु मैं सोचता हूं कि कितनी भेंटें परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। विश्वासी परमेश्वर के समक्ष याजक हैं और हमारी भेंट उदारता पूर्ण होना चाहिए। उदारता का अर्थ यह नहीं कि हम कम से कम दें। मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज रविवार के दिन धर्म निंदा होती है। आप कहेंगे इसका अर्थ है कि कोई चोरी करता है। जी हां, इसराइल की भेंट वास्तव में किसी मूल्य की नहीं थी, चाहे वे देखने में बड़ी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, दान पत्र में ऐसा दान डालना जिसमें आत्म त्याग ना हो तो वह धर्म निंदा है। यदि मैं स्पष्ट कहूं तो दान देना गलत है। लोग 500 रुपया देकर खेल देखने के लिए जाते हैं और परमेश्वर के लिए केवल 10 रुपया दान देते हैं। परमेश्वर कहता है कि वे सोचते हैं कि उन्होंने मुझ पर उपकार किया है। उनका सोचना गलत है। उन्होंने मुझे उतना भी तो नहीं दिया जितना होटल की परिचारिका को टिप दिया गया था। यह वचन कठोर नहीं है। मलाकी नबी की पुस्तक उसके 1:9 में लिखा है, अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये लोग प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार सब कुछ करते थे, परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर के साथ मन से उनका संबंध सही है या नहीं। उनके मन दूषित थे, अतः उनकी भेंट एवं बलिदान भी अशुद्ध थे। मलाकी 1:10 में आगे लिखा हुआ है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे ये धार्मिक कृत्य जिन्हें करने से तुम चूकते नहीं सर्वथा अर्थहीन है। ये किसी काम के नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं, परंतु वे फिर भी करते थे। मलाकी 1:11 में आगे वह कहता है, क्योंकि उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जिस प्रकार इसराइल परमेश्वर की सेवा कर रहा था, उससे परमेश्वर के नाम का अपमान हो रहा था। उनकी उपासना सुलेमान के युग जैसे नहीं थी। शीबा की रानी सुलेमान की आराधना को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी, परंतु इस समय वे अविश्वासी अर्थात अविश्वासियों पर प्रभाव डालने वाली उपासना नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी उपासना मात्र एक दिखावा, मात्र एक बाहरी रूप था। परमेश्वर कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब उसका नाम अन्य जातियों में महान होगा। यदि आप सोचते हैं कि आज यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है, तो यह आपका भ्रम है। यह भविष्यवाणी प्रभु राज में पूरी होगी। आज अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम महान नहीं है। और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती हैं। पूरा चढ़ाना, धूप चढ़ाना प्रार्थना करने का प्रतीक है और शुद्ध भेंट प्रभु यीशु का प्रतीक है। लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसराइल को चुनने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि वे संसार की सब जातियों में उसके गवाह हों, परंतु वे ऐसा नहीं कर रहे थे। मलाकी 1:12 में आगे लिखा है, परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती थी क्योंकि परमेश्वर की प्रजा का जीवन और कार्य ऐसे ही थे। उनके मन अशुद्ध थे और उनके अनुष्ठान घृणित थे। आज हम में से कई लोग ऐसा ही करते हैं। मलाकी 1:13 में लिखा है, फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। वह कहता है कि फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी। आज की भाषा में कहें तो आराधना में जाना हमारे लिए उबाऊ काम है। इन सब बातों से हम अब थक चुके हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका मन किसी काम में न लगे तो स्वाभाविक है कि आप उस काम से उब जाएंगे। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ सुबह आराधना में जा रहा था। मैं बहुत जल्दी में था परंतु यातायात के कारण फंसा हुआ था। उस दिन मुझे रेडियो प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग कार्य को जाना था और अपने आप को तैयार भी करना था। मैंने अपने बेटे से कहा, इन सब के चेहरे देखो, वे सब काम पर भाग रहे हैं और यातायात में फंसने के कारण सबके चेहरों पर खिन्नता है। मेरे विचार में संसार सबसे उबाऊ काम कर रहा है कि आपको वह काम करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते हैं। आपसे समय काटे नहीं कटता और आपको आनंद नहीं मिलता है। इसी प्रकार आराधना में जाना भी अनेक विश्वासियों के लिए अत्यधिक उबाऊ होता है। यही कारण है कि हम प्रायः सुनते हैं, हम आराधना में लोगों की रुचि जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम रविवार को उपस्थित बढ़ाने के लिए, लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब कोई सुझाव देता है, हमें आराधना के बाद भोजन व्यवस्था करना चाहिए या हमें आराधना के बदलाव के द्वारा कुछ और करना चाहिए, बाइबल अध्ययन आदि। अब उबाव हो गया है, इसलिए संगीत का होना जरूरी है, कुछ मनोरंजन होना चाहिए जैसे छोटे छोटे अभिनय आदि। मेरे मित्रों, समस्या क्या है? वे ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए उबाऊ है? पहले तो मनुष्य ने प्रथाओं का आरंभ ही क्यों किया? वे चोगा क्यों पहनते हैं? जाप क्यों करते हैं? परिक्रमा क्यों करते हैं? वे आराधना करने से उब क्यों जाते हैं? क्यों उब गए हैं? अब उन्हें मन बहलाने की आवश्यकता है। कोई कहता है, मुझे व्यवस्थित आराधना अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु उसमें खतरा भी है। प्रथागत आराधना में भी खतरा है। प्रथाओं का अपना स्थान है और अनेक विश्वासी ऐसे ही वातावरण में पले और बड़े हुए हैं। मेरी कलीसिया में एक अति प्रिय दंपत्ति था। वे परमेश्वर के वचन के प्रेमी थे। वे एक औपचारिक आराधना के अभ्यस्त थे। उनकी कलीसिया भी बड़ा नाम रखती थी। उस व्यक्ति को मेरा अनौपचारिक आरंभ पसंद नहीं था, अतः वह और उसकी पत्नी तब तक नहीं आते थे जब तक मेरी आरंभिक विधियां पूरी नहीं हो जाती थी। उसने मुझसे स्पष्ट कहा, मुझे यह अनौपचारिकता पसंद नहीं है, परंतु वह परमेश्वर के वचन से लगाव रखता था, इस कारण मैं उससे रुष्ट नहीं था। एक समय वह भी था जब हमारे पूर्वज 2 घंटे लकड़ी की बेंच पर बैठकर उपदेश सुनते थे। आज के विश्वासी घंटों धूप में बैठकर क्रिकेट के मैच देखते हैं, कुछ लोग 3 घंटे सिनेमा घरों में बैठे सिनेमा देखते हैं। मेरे मित्रों, आप अपने पादरी साहब के उपदेश से क्यों ऊब जाते हैं जब वह 15 से 20 मिनट से अधिक समय ले लेता है। मैं भी कम से कम 1 घंटा प्रचार करता हूं, और आप जानते हैं शिकायत कौन करता है? आराधक नहीं, क्योंकि वे तो कहते हैं कि मैंने अधिक समय नहीं लिया। शिकायत करने वाले कलीसिया के आत्मिक अगुए होते हैं। हमें प्रथाओं से, रीति रिवाजों से लगाव है। हम आराधना में खड़े होते हैं, बैठते हैं और स्तुति गान भी गाते हैं, परंतु हमारे मन कहाँ हैं? क्या हम अपने प्रेम से अभिभूत प्रभु की ओर ताकते हैं? क्या हम उसकी आराधना करते हैं? क्या हमारे मन में आराधना की लालसा है? हम गीत गाते हैं, ईशु को मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ। तो फिर अपने भेंट की थैली में 1 ही रुपया आपने क्यों डाला? क्या आपका सब कुछ 1 ही रुपया है? कलीसिया की सेवा में थकना और ऊब जाना बहुत आसान है। डीएल मूडी एक दिन घर आए तो वह बहुत थके हुए थे, परंतु उन्हें तुरंत ही बिना विश्राम किए दूसरी सभा में जाना था। उनके परिवार ने उनकी दशा देखकर कहा कि वे उस सभा को निरस्त कर दें, परंतु उन्होंने उत्तर दिया, मैं काम में थक जाता हूं परंतु काम से नहीं थकता। मेरे मित्रों, आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए काम में थक जाते हैं या शरीर में थक जाते हैं? परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो कहता है कि मैं काम में थक जाता हूं परंतु काम से नहीं थकता। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तरस रहा है,
लेने को तरस रहा है,
जग बड़ा तेरा नाम मसीहा।